यमुना तीरवन जाई यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
सभी लोग प्रेम से गाइए
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हो राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला भजो भजो मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला
प्रेम से सब लोग गाइए
विठला
भजो भजो मन मधुर कवि छोला
भजो 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 मन मधुर कवि छोला
मधुर कवि छोला पंडरी न कवि छोला
मधुर कवि छोला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरी नाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरी नाथ विठ्ठला
जो भाई जो
पांडुरंग
विठ्ठला भजो 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 मधुरंग
विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन विठ्ठला
भजो
भजो भजो मन मधुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल
विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला भजो
भजो भजो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय राधा
गिरिधर राधा गिरिधर राधे
जय
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गोरनिताय जय गोरनिताय गोरनिताय जय गोरनिताय
जय गोरनिताय
जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद हाँ प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय
नित्य गौर हरि गो
हरि गो
हरि गो
नित्य गौर हरि गो हरि बोल हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
नित्य गौड़ा हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की
जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगश्चंदनागदी संन्यास कृच्छ मह शांतो निष्ठा शांति परायण सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छ मह शांतो निष्ठा शांति परायण सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांगश्चंदनागदी संन्यास कृच्छ मह शांतो निष्ठा शांति परायण
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर प्रति रविवार को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित प्रवचन होते हैं। आज सुबह श्री राधा गिरधारी मंदिर में प्रति रविवार को प्रीति भोज प्रवचन होता है, संडे फीस्ट लेक्चर। तो उनमें आज हमारा प्रवचन था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन बहुत करीब आ रहा है, इसलिए महाप्रभु के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस कलयुग में यदि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भजन करना है, तो महाप्रभु की कृपा से ही वह सार्थक हो सकता है। इसलिए महाप्रभु की कृपा और अनुकंपा का पात्र बनने के लिए उन्हें समझना होगा। मैंने आज सुबह कहा कि वैसे तो इस संसार में बहुत बहुत जीव है, परंतु बहुत कम मनुष्य की संख्या है और मनुष्य में भी बहुत कम लोग कृष्ण के भक्त होते हैं और कृष्ण के भक्तों में भी बहुत कम लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। महाप्रभु को जानना, उनका कृपा पात्र बनना ये बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले महाप्रभु के बारे में जानने के लिए, महाप्रभु की लीला को जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। इस संसार में कृष्ण के और सभी अवतारों को तो सब लोग मानते हैं, परंतु कलयुग का यह ऐसा अवतार हुआ जिसमें भगवान भगवत्ता नहीं दिखाए, भगवान भक्त बनकर आए। अपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए, अपने आचरण से स्वयं भक्ति करके इस संसार के लोगों को उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। परंतु लोग धोखा खा जाते हैं और यही मानते हैं कि ये भगवान नहीं, ये तो भक्त हैं। परंतु भगवान के जितने भी अवतार होते हैं या भगवान जब जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो इसका सारा विवरण शास्त्रों में दिया हुआ होता है। पहले से ही सृष्टि के प्रारंभ से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस युग में यह भगवान आएंगे, इस युग में भगवान ऐसे होंगे। तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, महाप्रभु भगवान का अवतार नहीं है, परंतु महाप्रभु साक्षात अवतारी है। अवतार धारण करने वाले साक्षात गोलोक वृंदावन में रहने वाले भगवान कृष्ण है। और इस बात को अनेक अनेक शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है और उसमें भी जगत विख्यात आज दुनिया में रहने वाले सब लोग वेद व्यास जी के लिखे हुए महाभारत ग्रंथ को जानते हैं। महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक है, उस महाभारत में अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेखन किया गया है तो उस विष्णु सहस्त्र नाम में से एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का विवरण आता है। तो विष्णु भगवान के जो नाम जहां पर कहे गए हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु का नाम कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और महाभारत में जो श्लोक कहा गया है आप सबने उच्चारण किया, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदि संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। भगवान विष्णु के 1,000 नामों में से 10 नाम इस श्लोक में दिए गए हैं और ये 10 नाम डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के ही है। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु ही विष्णु है, भगवान है। तो आज सुबह राधा गिरधारी मंदिर में हम प्रवचन शुरू किए पर यह कंप्लीट नहीं कर सके थे। हमारे कुछ भक्तों की इच्छा थी कि प्रभु जी आप विरार में आपका प्रवचन है तो वहां पर इस श्लोक को कंप्लीट कर दीजिए, परंतु कुछ लोग यहां से नहीं आए थे इसलिए संक्षिप्त में थोड़ा मैं बता देता हूं, और नहीं आए इसलिए दंड भी समझिए कि संक्षिप्त में बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नहीं है। परंतु सबसे पहले महाभारत में लिखा गया है इस श्लोक में कि सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। सुवर्ण जिसका अच्छा वर्ण है, अच्छा नाम है, उसे सुवर्ण कहते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छा नाम भगवान श्री कृष्ण का है। तो सुवर्ण का जो वर्णन करते हैं उसका नाम है सुवर्ण, सुवर्ण वर्ण। तो सुवर्ण का, कृष्ण का वर्णन किसने किया है? शास्त्र खोलकर देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का जितना वर्णन किया है, जितना नाम लिया है, इतना और किसी ने नहीं लिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ही एक नाम सुवर्ण वर्ण है और महाभारत में दिया गया है। तत्पश्चात दूसरा नाम है हेमांगो, हेम अंग, जिसके अंग हेम सोने के समान चमक रहे हैं उसे हेमांग कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का अंग सोने के, तपाए हुए सोने के समान था। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए थे। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो नवान ये वा, राधा रानी के भक्ति की महिमा, उनके कृष्ण के साथ प्रेम करने में कितना आनंद है, इस रस का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर ही, कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो राधा रानी का भाव ग्रहण करने के कारण उनका रंग तपाए हुए सोने के समान, हेम की तरह, हेम करता है सोना, उनका अंग है हेम के समान हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है हेमांगो और महाभारत में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि यही विष्णु है, यही कृष्ण है। तत्पश्चात तीसरा नाम देते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में वरांग, संधि विच्छेद वर अंग, जिसके अंग वरण करने योग्य है, जिसके अंग श्रेष्ठ है उसे वरांग कहा जाता है। अब देखिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल में उनके अंग बिल्कुल श्रेष्ठ अंग माने गए हैं, देखे गए हैं। सौष्ठव्य में देखने में भी सुंदर और प्रभाव में भी सुंदर, कोई भी व्यक्ति महाप्रभु की ओर देखता तो मोहित हो जाता, और महाप्रभु का अंग जिसे स्पर्श हो गया वे तो फिर इस दुनिया से विरक्त हो गया, किसी के काम का नहीं रहा। रूप गोस्वामी ने अपनी पद्यावली में बहुत सुंदर लिखा है कि हे भक्तों, हे संसार में रहने वाले लोगों, यदि अपने परिवार के साथ सुखी सुखी होकर रहना है तो कभी वृंदावन में मत जाना। चाहते हो कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर बिताए और सुखी होकर रहे तो वृंदावन में मत जाना, और वृंदावन में यदि चले भी गए तो यमुना के किनारे मत जाना। अपने श्लोक में, ग्रंथ में लिखे हैं। और यमुना के किनारे भी यदि पहुंच गए तो हाथ में बांसुरी रखने वाले उस कृष्ण का दर्शन मत करना, क्योंकि वह कृष्ण इतने सुंदर हैं, यदि किसी ने उसकी ओर देख लिया तो वे अपने मन को हर लेते हैं। और यदि आपका मन कृष्ण की ओर चला गया तो इस संसार की वस्तुओं में मन लगेगा नहीं। जैसे गोपियों का मन कृष्ण ने हर लिया था, गोपियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हम पर कृपा करो कि हम कुछ क्षण के लिए कृष्ण को भूल सके। हमें क्या प्रार्थना करती है, करनी पड़ती है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपको हम याद कर सके। परंतु गोपियां भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ क्षण कृष्ण को भूल सके ताकि घर का कुछ भोजन खाना तो बना सके। तो भगवान की सुंदरता अद्भुत है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव जब भगवान को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। चैतन्य महाप्रभु वरांग थे, सुंदर अंग था देखने में भी और प्रभाव में भी। तो वरांग नाम जो है और किसी के लिए नहीं, महाप्रभु के लिए। और चंदनागदी, चंदनागदी का अर्थ होता है जो अपने शरीर पर चंदन लगाता है। चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर पर खूब चंदन लगाते थे। कुछ लोग चंदन लगाने में बहुत डरते हैं, शर्म लगती है, क्या कहेंगे ऑफिस वाले। हम कहते हैं कि आप कंठी और चंदन लगाओ, माला जपो, तो नहीं जपते हैं। हाँ, घर पे रहेंगे तो तिलक करेंगे और बाहर निकलने पर धो डालेंगे, और कहते हैं बहुत शर्म लगती है। कलयुग का प्रभाव तो देखिए, शराब पीने में शर्म नहीं लगती है, छोटे छोटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं लगती है, जर्दा गुटखा खाने में शर्म नहीं लगती है, फिल्म के गाने गाने में शर्म नहीं लगती है, किसी लड़की के साथ घूमने में शर्म नहीं लगती है, और भाल पर तिलक करने में बहुत शर्म लगती है। एक कलयुग का प्रभाव है और हमारे मन की बीमारी है। वास्तव में चंदन, खूब चंदन लगाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि हम जो चंदन लगाते हैं वो कोई साधारण चंदन नहीं है, मलय पर्वत पर उगने वाला कोई लकड़ी का चंदन नहीं है। गौड़ीय वैष्णव जो अपने भाल पर चंदन धारण करते हैं, ये द्वारका के गोपी तालाब का चंदन है, जहां पर गोपियों ने अपने प्राण त्यागे और उनका शरीर ही इस चंदन के रूप में प्रकट हुआ है। ये गोपियों का प्रेम है, गोपियों का चंदन है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर गोपी चंदन धारण करता है, इसे ऊर्ध्व पुण्य तिलक कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरण है और नीचे तुलसी जी है, और भगवान के जो भक्त होते हैं एक नहीं 12 तिलक अपने शरीर पर लगाते हैं। तिलक क्या करते हैं, पूरा कवच ही कर देते हैं, वे शरीर फिर किसी माया में फंसता नहीं। तिलक होना चाहिए, और साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारे शरीर की जितनी भी नस और नाड़ियां है उसका जंक्शन है ये भाल यहां पर। इसलिए आप देखो, जब आप बहुत सोचोगे तो क्या कहां दर्द होगा, यहां पर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे नसों का और नाड़ियों का जंक्शन होता है। तो साइंस भी कहता है कि यदि आप अपने सिर पर चंदन लगाओ तो चंदन इतना ठंडक होता है, ठंडा होता है कि शांत हो जाता है मगज, दिमाग, मन और बुद्धि। तो चंदन लगाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु खूब चंदन लगाते थे अपने शरीर पर, हाथ पर, पूरे सिर पर, इसलिए उनका नाम ही था चंदनांगदी। कितना नाम हुआ? सुवर्ण वर्ण, हेमांगो, वरांग और चंदनांगदी। सहस्त्र नाम में से 4 तो महाप्रभु के आ गए, अब 5वां नाम है संन्यासकृत। संन्यासकृत का अर्थ होता है जो संन्यास धारण करता है, संन्यास लेता है। तो आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, भगवान का ऐसा कौन सा अवतार है जिसने संन्यास लिया? कोई नहीं, एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के अलावा। तो महाभारत में जो ये शब्द, यह नाम आया है संन्यासकृत, और किसी के लिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु के लिए है। इसलिए प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, भगवान है। संन्यासकृत, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण किया। तत्पश्चात उनका एक नाम है शम। शम का अर्थ होता है सर्वभूतानाम, शम इतेति वा शम, जो सभी भूतों को, संस्कृत में जीव को भूत कहा जाता है, परंतु हिंदी में भूत को भूति कहते हैं। वास्तव में यह जीव भूत के जैसा ही है, भजन नहीं करने वाला भूत ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भजन नहीं करता है तो उसका जीवन कैसा है? जीवन शव समान सो प्राणी। भजन नहीं करने वाला मनुष्य शव के समान है। शव जानते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके आंख, कान, नाक, शरीर वही रहता है, परंतु आत्मा निकल जाती है। इसलिए तो शव को कोई देखना चाहता है, शव के बाजू में कोई बैठना चाहता है। अरे उससे कितना भी कोई प्रेम करता हो, जैसे वो मर जाता है, शव हो जाता है, तो कहते हैं निकालो अब जल्दी यहां से, बास आने लगती है। कहते हैं भजन नहीं करने वाले शव के समान है, भले जीवित है। मान लीजिए कोई जीवित है परंतु भजन नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ होगा मुर्दा सांस ले रहा है, वह शव है परंतु सांस ले रहा है। अरे ऐसे व्यक्ति के पास तो कोई कभी नहीं बैठता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और शमशान यात्रा जा रही है, उसको उठाकर राम नाम सत्य है करके जा रहे हैं, और रास्ते में यदि वह खड़ा हो जाए तो सब लोग उसे छोड़कर भाग जाएंगे, भागो यहां भूत आया। तो जैसे वशव के पास कोई जाना नहीं चाहता है, भूत समझने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करने वाले शव के समान, भूत के समान है। परंतु यहां पर भूत का अर्थ है जीव, जो सभी जीवों को शांति प्रदान करते हैं, उसे शांतक कहा जाता है। अच्छा, जीव अशांत क्यों है? सब लोग अशांत हैं, तो इसका उत्तर देते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। अशांति क्यों है जीवन में? क्योंकि कामनाएं हैं, भुक्ति की कामना अर्थात संसार के भोग भोगतने की कामना, मुक्ति की कामना सायुज्य सालोक्य प्राप्त हो जाए, सिद्धि की कामना। तो बहुत बहुत कामना होने के कारण व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। यहां से वहां, वहां से यहां, विरार से चर्चगे से विरार, कामनाएं उसे भगाती रहती है, शांत नहीं कर रखती। परंतु यदि कोई कृष्ण की भक्ति करने लगता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण का भक्त शांत हो जाता है। कृष्ण का भक्त शांत होता है। तो शांति भक्ति करने से ही आ सकती है। भक्ति का सर्वप्रथम गुण है शांति अव्यर्थ कालत्व। भजन करने से सबसे पहली वस्तु क्या आती है? शांति। पता है कुछ लोग कितने टेंशन में है, यहां से वहां घूम रहे हैं, जैसे ही भक्ति करने लगते हैं, प्रवचन में आ जाते हैं, तो शांति, नींद आ जाती है। कुछ लोग सो रहे हैं। सो क्यों रहे हैं? नींद तभी आती है जब शांति होती है। अशांति में किसी को नींद आ सकती है? तो भगवान के भजन में बहुत शांति है, बहुत सोते हैं। हम तो कहते हैं कि आप गोली गोली मत लीजिए सोने के लिए, हमारे प्रवचन में आ जाइए, बिना गोली के नींद आ जाएगी, गारंटी के साथ। ये गारंटी का माल है, वो गोली लेकर नींद आए या ना आए, ये तो ठीक है। इस प्रवचन में थोड़ी लीला है, इसलिए कुछ लोग जग रहे हैं। यदि भगवत गीता का कोई सैद्धांतिक शुरू किया जाए तो सब लोग सो जाएंगे। तो शांत, इसका अर्थ ये नहीं सोना, यहां पर आए कुछ सुनने के लिए, परंतु भक्ति का यह स्वभाव है कि शांति मिलती है। तो इस संसार में सब लोग अशांत हैं, कौन शांत है? सब लोग अशांत, सब लोग कामी हैं, सब लोग के जीवन में असंतोष है। परंतु चैतन्य महाप्रभु आए और अब भगवान की शुद्ध भक्ति, अपनी स्वयं प्रेम भक्ति देकर सबको शांत कर दी। यहां तक प्रवचन हुआ था, अब प्रारंभ करते हैं यहां से। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम शांत है, महाभारत में दिया गया है, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत लोगों को शांत किया। अर्थात अशांत व्यक्ति को शांत करने का अर्थ है उसे भक्त भक्त बनाया, और भक्त में भी शुद्ध भगवान का प्रेमी भक्त, कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं देखा कि ये इसका पात्र है या नहीं है। अब कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी से दूध मांग रहे हैं और कहे कि हमें दूध दे दो, कहां दूध, जेब में दे दो, पात्र नहीं है, दूध नहीं टिकेगा, पात्र होना चाहिए। महाप्रभु ने देखा कि कोई पात्र के योग्य नहीं है, किसी के पास पात्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले पात्र थमाया और बाद में प्रेम भक्ति का दान किया, इसलिए महावदानीय कहते हैं। एक से एक व्यक्ति के ऊपर महाप्रभु ने कृपा की। एक बार नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कीर्तन नगर संकीर्तन करते थे, परंतु उन दिनों मुसलमान राजाओं का बहुत बड़ा भय होता था, वे कीर्तन संकीर्तन नहीं करने देते थे। तो एक बार मुसलमान राजा को पता चला तो उन्होंने नवद्वीप में दो नाव भरकर सैनिकों को भेजा कि जाओ पिटाई करो उन लोगों को। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, जितने भी भक्त थे, श्रीवास पंडित इत्यादि, वे डरने लगे कि क्या होगा क्या होगा। महाप्रभु ने कहा डरो मत, आप मुझ पर विश्वास नहीं है। कहा प्रभु आप पर विश्वास है लेकिन वो लोग हमें इतना पीटेंगे, क्या करेंगे विश्वास का। महाप्रभु ने कहा धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास रखो, वो जितने भी सैनिक आ रहे हैं उसके समेत उस राजा को भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पे नचा दूंगा, याद रखना। तभी भी सब लोग डर रहे थे। महाप्रभु ने कहा कि अभी भी डर रहे हो इतना कहने के बाद भी? तो महाप्रभु ने कहा चलो सैंपल दिखाना होगा ये लोगों को, देखो मेरी ओर देखो, तुम लोग डरो मत। तो उस समय श्रीवास की भतीजी, श्रीवास के भाई की लड़की छोटी सी वहां पर खड़ी थी, और महाप्रभु ने कहा देखो मेरा प्रभाव, तो शिवास की भतीजी जिसका नाम था नारायणी, नारायणी को कहा कि बेटा कृष्ण बोलो। महाप्रभु ने उनकी आंखों में आंख डालकर कारुण्य का भाव लाकर कृपा की दृष्टि से उसके ओर देखकर कहा कि बेटा कृष्ण बोलो। एक बार कृष्ण बोला, दूसरी बार कहा बोलो कृष्ण, दूसरी बार कृष्ण, तीसरी बार जब कृष्ण बोला तो वो नारायणी अष्ट सात्विक विकार होने लगा, नाचने लगी, गाने लगी, भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। वास्तव में वहां पर पहुंचने के लिए साधु संघ, श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, एक नहीं दस जन्म के बाद व्यक्ति उस चीज व स्थान पर पहुंच सकता है। महाप्रभु के केवल तीन मंत्र बोलने से, उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि से वह उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए महाप्रभु को शांत कहा जाता है। और एक घटना आती है कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी थे जिसका नाम था शुक्लांबर, वे बहुत तीर्थाटन किए, बहुत तीर्थ में घूमे, बहुत स्नान किए और जितने जितने मंदिर देखे उसमें प्रणाम किए, परंतु फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। कैसे होता है कृष्ण प्रेम? घर छोड़ देने से प्राप्त नहीं होता है। भागवत में आया है, जड़ भरत रघु राजा रघुगण को कहते हैं कि हे राजा रघुगण, रहु गणेत तपसान याति, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं, न चैज्यात निर्वपणात गृहात, घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, न छंदसा जल अग्नि एव सूर्यो, सूर्य में तपने से, पानी में पड़े रहने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो पूछा भगवान कैसे मिलते हैं, कहते बिना महत पाद रजो अभिषेक, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की रज से अभिषेक नहीं किया जाएगा तब तक शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। भक्तों के चरणों में गिर कर लौट कर उनकी चरण रज को सिर पर धारण करना होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबकी चरण रज ले लेकर सिर पर डालो, इसका अर्थ यह है कि भक्तों के उपदेश, भक्तों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी बहुत तीर्थाटन किए, कृष्ण प्रेम नहीं मिला, अंत में महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु के चरणों में गिर गए, लौट गए और चरण पकड़कर कहने लगे कि मुझे प्रेम दान दीजिए, मुझे मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम कर सकूं, प्रेम दान कीजिए। महाप्रभु करुणा से भर गए और इतना ही कहा, लिखते हैं चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि महाप्रभु ने कहा जा तुझे प्रेम दे दिया। इतना जब महाप्रभु ने बोला कि जा तुझे प्रेम दे दिया, तब वो विवल हो गया, नाचने लगा, गाने लगा, हरे कृष्णा अष्ट सात्विक विकार रोंगटे खड़े हो गए, मुंह से फेन निकलने लगा और आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा निकलने लगी। महाप्रभु के कहने से प्रेम प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु शांत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदान किए। और एक घटना आती है कि गदाधर पंडित महाप्रभु के भक्त थे, उनके साथ रहते थे और एक बार रात भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और मन में यही अभिलाषा थी कि इतना जप कर रहा हूं परंतु कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है। जप करते करते रो रहे थे। असम प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रोते रोते जप करना चाहिए, जैसे एक बालक अपनी माँ को बुलाने के लिए, अपनी माँ को प्राप्त करने के लिए रोता है। अब देखिए बालक है और माँ कुछ घर का काम कर रही है और बालक चिल्लाए तो माँ उसके पास नहीं जाती, परंतु यदि बालक रोने लगे तो तुरंत माँ दौड़ कर आ जाती है। तो वैसे हम कितना भी गला फाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, भगवान शायद नहीं सुनेंगे, परंतु रोएंगे तो निश्चित भगवान आएंगे। तो रोते रोते प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोते रोते भगवान के नाम, इसका अर्थ यह भी नहीं कि संसार के लोगों को दिखाते दिखाते रोए कि देखो मैं रो रहा हूं, नहीं, इस भाव को सीक्रेट रखना चाहिए, छिपा छिपा कर रखना चाहिए। तो गदाधर पंडित रात को रोते हुए भगवान के नाम का जप कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे। देखा ये गुनगुन गुनगुन कौन कर रहा है। उठकर देखे तो गदाधर रात को 2 बजे रोते रोते जप कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है इतनी मेहनत कर रहा है, जा कल सुबह तक तुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह हुआ, गदाधर पंडित भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अष्ट सात्विक विकार होने लगे, नाचने लगा। एक से एक व्यक्ति को अपने भक्तों के ऊपर तो कृपा की, परंतु पाखंडी जो गाय को मारकर खाते हैं ऐसे लोग को भी महाप्रभु ने नहीं छोड़ा। एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवासांगन में मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तो मंदिर की परिक्रमा करते करते उनकी दक्षिण की ओर एक मुसलमान दर्जी कपड़ा सी रहा था। क्योंकि मुसलमान था इसलिए शराब के नशे में चूर था, बहुत शराब पी रखी थी। तो महाप्रभु को दया आ गई कि बेचारा बहुत अज्ञान में है, अंधकार में है। महाप्रभु ने सोच लिया कि इस पर कृपा करनी है। तो महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते 2 मिनट उसके सामने खड़े रह गए, और खड़े रहकर जैसे ही चलने लगे तो मुसलमान दर्जी को क्या हुआ, जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने देख लिया। अरे भाई क्या देखा तुमने, आज तक किसी को नहीं पता है क्या देखा, परंतु आज तक वो वही यही करता रहा, मैंने देख लिया। उस दिन से उसने शराब पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वास्तव में उसने क्या देखा, उसने चैतन्य महाप्रभु के षटभुज का दर्शन किया, साक्षात भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, और पता चल गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है तो साक्षात कृष्ण है। बस चैतन्य महाप्रभु का यह दर्शन हुआ और उस दिन से वह मुसलमान अपनी दोनों भुजा ऊपर करके हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से मुसलमानों को और भी बहुत बहुत लोगों को, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके दक्षिण यात्रा में गए, दक्षिण भारत की यात्रा में, और वहां तो गांव के गांव को भक्त बना दिया। मैंने एक कथा कही थी सुबह, एक धोबी की कथा, सुनेंगे फिर से। एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो वृंदावन जा रहे थे तो धोबी घाट पड़ा रास्ते में, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी टुकड़ी से अलग होकर उस धोबी घाट पे गए और एक धोबी कपड़ा धो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने धोबी को कहा कि धोबी बोलो हरि बोल। धोबी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो तो कपड़ा धोते रहा। चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी बार कहा कि बोलो हरि बोल। धोबी ने कहा कि हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम तो धोबी है, हम आपको क्या भीख देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भीख में पैसा नहीं चाहिए, इतना ही भीख चाहिए कि हरि बोलो। धोबी ने कहा कि यदि इसके साथ में हरि बोल बोलने लगा तो पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे। धोबी कहने लगा हमारे पास कोई समय नहीं है, यदि मैं भी तुम्हारी तरह हरि बोल करने लगा तो पत्नी और बच्चे क्या खाएंगे। तो महाप्रभु ने हृदय में कारुण्य का भाव लाकर कहा कि यदि तुम्हारे पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे तो कपड़ा मैं धोऊंगा, पर तुम हरि बोल बोलो। धोबी अब तक चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं देखा था, लेकिन जब महाप्रभु ने कहा कि कपड़ा मैं धो दूंगा तुम हरि बोलो, तब धोबी ने ऊपर करके देखा तो अरे बाप रे बाप, तेजस्वी सन्यासी जिसके मुख से तेज चमक रहा था और जिसकी आंखों में प्रेम था, प्रेम की आशा थी, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि बोलो कपड़े मैं धो दूंगा। धोबी ने महाप्रभु की आंख में आंख डालकर कहा चलो कह रहे हैं तो एक बार हरि बोल बोल दिए। महाप्रभु ने दूसरी बार कहा कि हरि बोलो हरि बोल। महाप्रभु ने तीसरी बार कहा हरि बोल। जब तीसरी बार हरि बोल वो धोबी बोला तो महाप्रभु ने उसे अपने गले लगा लिया। गले लगाया, गले क्या लगाया, वह धोबी को प्रेम का संचार कर दिया। जिस प्रकार से महाप्रभु नाचते हैं, कूदते हैं और महामंत्र जपते हैं, वैसे धोबी भी गले लगकर, गले से दूर होकर जोर जोर से कीर्तन करने लगा, नाचने लगा और हरि बोल की ध्वनि करने लगा। वर्णन करते हैं आचार्य के, जब वे नाचने लगा तो चैतन्य महाप्रभु दूर हो गए और देखने लगे कि वे कैसे नाच रहा है, महामंत्र जप रहा है, बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूज नाचने लगा। कहते हैं कि जैसे एक बालक किसी खिलौने पर चाबी भर देता है और खिलौने को छोड़कर दूर हो जाता है और उसे देखता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु उसमें प्रेम रूपी चाबी का संचार कर दिए और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर देखने लगे ये क्या कर रहा है। तो ये तो नाच ही रहा था, आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी, कभी कभी मूर्छित हो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। और उतने में उनकी पत्नी देखी कि ये कितने समय से गए हैं धोबी घाट पर, घर पर नहीं आए, तो ढूंढने के लिए आई। और पत्नी ने आकर देखा तो बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है पत्नी। अरे बाप रे, जीवन में कभी नाचा नहीं है ये मेरा पति, जीवन में कभी ठुमका नहीं लगाया है। इसको मंदिर में जब भेजते हूँ तो जबरदस्ती कोई उस टोली में डाल देता है, तो दो तीन बार ऐसे ऐसे करके वापस आ जाता है। जीवन में कभी नाचा नहीं और इतना सुंदर क्यों नाच रहा है आज, क्या हो गया इसे, समझ में नहीं आया। वो तो सोचने लगी कि इसे लगता है भूत स्पर्श कर लिया है, किसी भूत ने इसका स्पर्श कर लिया है, नहीं तो ये ऐसा थोड़ी ना करता। नाचते में भूत ने नहीं, नंद के सूत ने स्पर्श किया था, सची के सूत ने स्पर्श किया था। तो ये तो चिल्लाने लगी, गांव वालों देखो क्या हो गया, क्या हो गया, भूत लग गया, भूत लग गया। सारे गांव वाले आए और सारे गांव वाले देखने लगे तो ये तो रोते हुए हंसते हुए नाच रहा है। तो गांव वालों में से भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि कौन उस भूत के पास जाए, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ और धीरे 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 उस धोबी के पास गया और धोबी का हाथ पकड़ कर कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम। इतना कहा तो धोबी ने उसे गले लगा लिया। गले क्या लगाया, उसके पास जो प्रेम की संचार शक्ति थी वह करंट उस व्यक्ति में आ गया और वे भी हरि बोल हरे कृष्णा हरे 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 राम। अब तक एक नाच रहा था, अब दो नाचने लगे, दो को आनंद आने लगा, एक दूसरे को देखकर जोर से नाचने लगे। अब क्या करे भाई, पूरा गांव ये तमाशा को देख रहा है, दोनों कृष्ण के प्रेम में मशगूल हो गए। तब उस धोबी की पत्नी से नहीं रहा गया कि अरे ये कभी का नाच रहा है, ऐसे करके गई उनके पास और हाथ पकड़ लिया उसका, क्या कर रहे हो तुम। तुरंत उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया, पत्नी को क्या गले लगाया, उसको भी करंट पास हो गया, वह भी नाचने लगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस धोबी के ऊपर कृपा की और ऐसे असंख्य लोगों पर कृपा की। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में दक्षिण भारत के गांव में जाते थे, चौराहे पर उस गांव का जो व्यक्ति मिलता था उसे गले लगा लेते थे और उसको प्रेम भक्ति प्रदान कर देते थे, कृष्ण की प्रेमा भक्ति, कृष्ण का कीर्तन करने लगता था। और वो व्यक्ति जब अपने गांव जाता तो गांव में जाकर जो कोई व्यक्ति उसे मिलता तो उसे गले लगाकर पूरे गांव वालों को भक्ति दे देता। और उस गांव में कोई मेहमान बनकर आए होते वह भी इस प्रकार से भक्त बन जाते, वे जब अपने गांव में जाते तो वे भी अपने गांव वालों को स्पर्श करते तो वह भी भक्त बन जाते। और उस गांव में जो दूसरे गांव के लोग आते वे भी भक्त बनकर अपने गांव में जब जाते तो वे भी, वैसे करके हजारों हजारों लोगों को, सैकड़ों गांवों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति प्रदान करके भक्त बना लिया और जीवन की अशांति से मुक्त कर दिया। इसलिए महाप्रभु का एक नाम है शांत, जो महाभारत में आया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बहुत लोगों को शांत किया, कृष्ण भक्ति प्रदान की। उनकी लीला में आता है कि एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर गोदावरी नदी के तट पर गए और वहां पर उसे राय रामानंद मिले जो मंत्री थे, और राय रामानंद को देखकर और उसे गले मिलकर उसे भी प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। मंत्री थे, आज मंत्री बनने के लिए, मंत्री की कुर्सी के लिए कितना झगड़ा करते हैं लोग, परंतु महाप्रभु ने गले क्या लगाया, कुछ दिन के बाद मंत्री फंत्री सब कुछ छोड़कर जगन्नाथपुरी में आकर महाप्रभु के साथ रहने लगे। महाप्रभु के जीवन में आया है, उनके अंतिम समय में यही राय रामानंद जो एक दिन के मंत्री थे और सर्व दामोदर रहा करते थे। इस प्रकार से महाप्रभु सबको अपनी प्रेम भक्ति बांटते रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए तो जगन्नाथपुरी में एक राजा थे जिसका नाम था प्रताप रुद्र। वास्तव में बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे। तो राजा चूंकि कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे इसलिए उनकी इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु का दर्शन करूं, साक्षात उन्हें मिलना चाहता हूं। परंतु महाप्रभु के जीवन का सिद्धांत है, सिद्धांत था क्योंकि मैं सन्यासी हूं इसलिए किसी भी स्त्री से नहीं मिलूंगा और किसी राजा से नहीं मिलूंगा। सन्यासी का यह सिद्धांत होता है। महाप्रभु ने कहा वे भले मुझसे मिलना चाहते मैं नहीं मिलूंगा। राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि आप कुछ कहिए, समझाइए महाप्रभु को। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बहुत समझाए कि वे राजा भले राजा है परंतु आपके भक्त हैं, आप उससे मिलिए, वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। महाप्रभु ने कहा मैं किसी भी स्त्री और राजा से नहीं मिलना चाहता हूं, भले वो भक्त है जो भी है परंतु उसके पीछे राजा लगा है इसलिए मैं उससे नहीं मिलूंगा। राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मैं राजा की पदवी छोड़ दूंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा परंतु आप मुझे दर्शन दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसके जीवन में राजा लग चुका है उसका दर्शन मैं कभी नहीं करूंगा। देखिए सन्यासी की यह स्थिति थी। चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी राजाओं का और धनी लोगों का संग करना नहीं चाहते थे, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहते। आज के सन्यासी पैसे वालों का ही दर्शन करना चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, हमारे मंदिर मठ में कुछ आ जाए। गरीबों के पास तो जाते नहीं। परंतु महाप्रभु की परंपरा में देखिए महाप्रभु स्वयं धनी लोगों से नहीं मिलते, वे दीन और गरीब लोग से बहुत प्रेम करते। और ये सत्य बात है, वास्तव में जो धनी है वे भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदन कुमान। महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि जो अच्छे कुल में जन्म लिया है, जिसके पास धन है, पद है, ऐश्वर्य है, वे कभी कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे अभिमान होता है। और चैतन्य महाप्रभु धनी व्यक्ति से बहुत डरते थे, बहुत स्त्री और धनी व्यक्ति से, ये सत्य बात है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा। जब प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत बहुत फोर्स किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं प्रताप रुद्र से तो मिलूंगा ही नहीं, चाहे वो राजा रहे या न रहे, परंतु उनके पुत्र से मिलूंगा। और क्योंकि पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है, आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र ही अपनी आत्मा के रूप में जन्म लेता है। तो पुत्र और पिता में क्योंकि कोई अंतर नहीं है इसलिए मैं उनके पुत्र को मिलूंगा। तो प्रताप रुद्र राजा ने अपने पुत्र को चैतन्य महाप्रभु के पास भेजा और चैतन्य महाप्रभु ने उस राजा के पुत्र को अपने गले लगा लिया। जो जो गले लगे महाप्रभु के वे इस संसार के कोई काबिल नहीं रहे, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। उस प्रताप रुद्र राजा के पुत्र को अपने गले लगाया और अपनी प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति का संचार किया। और वह कृष्ण प्रेम लेकर जब अपने पिता के पास गया तो प्रताप रुद्र ने देखा कि ये मेरा लड़का भगवान से आलिंगन करके आया है, वे नहीं रह सके और अपने पुत्र को गले लगा लिए। और जैसे प्रताप रुद्र ने अपने पुत्र को गले लगाया तो वह भी करंट वहां भी पास हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र उसके पुत्र पर कृपा की। और भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती जो काशी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और उनकी विद्वत्ता को देखकर काशी के बड़े बड़े लोग उनके अंडर में आकर उनके अंडर में सन्यासी बन गए। वास्तव में वो मायावादी थे, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे। और चैतन्य महाप्रभु को क्या मानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, वे इंद्र जाल विद्या जानता है, कुछ कुछ विद्या जानता है जिससे सबको मोहित कर रहा है। ये भगवान भगवान नहीं है, इस प्रकार से लोगों को कहा करते थे। परंतु एक दिन हमारे महाराष्ट्र में किसी के घर पर आए प्रकाशानंद सरस्वती, और उसी के घर पर महाप्रभु पहुंच गए, और महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो भगवान है। और फिर एक दिन जब महाप्रभु मंदिर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, तो जो प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, मायावादी थे, महाप्रभु के कीर्तन को देखकर रह नहीं सके, वे भी महाप्रभु के साथ नाचने लगे, और उनके जितने भी शिष्य थे सभी सन्यासी देखते रह गए, ये हमारे गुरु प्रकाशानंद सरस्वती शास्त्र के प्रकांड विद्वान आज उस महाप्रभु के साथ, उस बालक के साथ नाच रहे हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उस दिन से महाप्रभु के भक्त बन गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बड़े बड़े पंडितों के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर अपनी कृपा की। महाप्रभु ने मनुष्य के ऊपर तो कृपा की, मुसलमानों के ऊपर, यवनों के ऊपर कृपा की, साथ साथ प्राणियों को भी नहीं छोड़ा, प्राणियों के ऊपर भी कृपा की। महाप्रभु नदी में स्नान करते, हाथ बाजू में हाथी स्नान करते, एक बार महाप्रभु ने हाथ में पानी लेकर हाथी के ऊपर डाला तो हाथी बेचारा वह भी प्रेमा भक्ति में आकर नाचने लगा हाथियों को। एक बार भावावेश में नाचते नाचते झारखंड के जंगल से जा रहे थे, उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य उनकी सेवा में थे, वे पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन रास्ते में एक शेर सो रहा था, और बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि यदि महाप्रभु का चरण शेर को स्पर्श हो गया तो हम दोनों आज हरि बोल। इतना सोच ही रहे थे तो उतने में महाप्रभु का चरण उस शेर को स्पर्श हो ही गया, और वह खूंखार शेर खड़ा हुआ, लेकिन महाप्रभु का चरण जिसको स्पर्श हुआ है, जिसको महाप्रभु का हाथ स्पर्श होता है वो प्रेमा भक्ति में आ जाता है, तो जिसको चरण स्पर्श हो जाए तो उसका क्या कहना। वे शेर अपना जन्मजात स्वभाव भूलकर महाप्रभु के साथ नाचने लगा, हरे कृष्णा हरे। इस प्रकार से महाप्रभु अपनी प्रेम भक्ति संसार में देते रहे। और अंतिम एक छोटी सी कथा कह दूं कि महाप्रभु के भक्तों में एक शिवानंद सेन थे, और शिवानंद सेन जब महाप्रभु के भक्त यात्रा में जाते थे, जैसे हम लोग जाने वाले हैं, तो प्रसाद का डिपार्टमेंट संभालते थे। तो शिवानंद सेन एक बार नदिया से, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी यात्रा में सब लोग गए, और नवद्वीप से जब सब लोग निकले तो नवद्वीप का एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया, और शिवानंद सेन समझे कि चलो इसे भी यात्रा करनी है, तो अब सबके लिए भोजन पिरोसते तो कुत्ते के लिए भी एक प्लेट रख देते और कुत्ते को भी भोजन कराते। इस प्रकार से एक दो तीन दिन तक चला, और एक दिन देखा कि शिवानंद सेन सबको भोजन पिरस दिए और फिर अंत में कुत्ते को ढूंढने लगे तो कुत्ता नहीं मिला। बहुत चिंतित हो गए कि बेचारा कुत्ता हमारे साथ चला था और उसे हमने भोजन नहीं दिया, बहुत चिंतित हुए। और चिंतित होकर धीरे धीरे करके जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे और जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उसी कुत्ते को भगवान का प्रसाद नारियल खिला रहे थे। शिवानंद सेन आश्चर्यचकित हो गए कि ये कुत्ता तो हमारे साथ था, यहां क्या कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब ये कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं है, अब ये कुत्ता दिव्य हो चुका है। और दूसरे दिन शिवानंद सेन ने ढूंढा तो दूसरे दिन वह कुत्ता नहीं मिला। तब पूछा महाप्रभु को, महाप्रभु वो कहां गया। तब महाप्रभु ने कहा कि मेरी कृपा हो गई और चतुर्भुज धारण करके भगवान के धाम में चला गया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुत्ते भी यदि चतुर्भुज धारण करके भगवान के धाम में जा सकते हैं, तो हम तो कुत्तों से थोड़े श्रेष्ठ है। तो मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त करे उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना होगा, और महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक ही चीज है, हरे कृष्णा तो इस प्रकार से सबको भक्ति देकर सबको शांत किए, जो अशांत लोगों को शांत किए, इसलिए उनका नाम हुआ शांत। और यह नाम विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में दिया गया। तत्पश्चात कहते हैं शम, तत्पश्चात कहते हैं शांत। शांत का अर्थ होता है स्थिर चित, अचंचल चित, जिसका चित किसी भी काल में किसी भी समय में विचलित ना हो, उसे शांत कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में विचार किया जाए तो बचपन में चंचल थे, बचपन में बहुत चंचल थे, परंतु जब किसी के साथ बातचीत करते या कोई डिसीजन लेना होता तो वे बहुत शांत रहते और गंभीर होकर वे किसी के साथ बैठकर बात करते और डिसीजन लेते। इसलिए महाप्रभु को शांत कहा गया है। फिर है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ श्रीपाद शंकराचार्य करते हैं कि जीव इस संसार का जब प्रलय होता है, तो प्रलय जब होता है तो संसार की सभी वस्तु और संसार में रहने वाले सभी जीव भगवान में समा जाते हैं। जहां पर सभी जीव समा जाते हैं उस वस्तु को निष्ठा कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और भगवान में ही सभी जीव समाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है निष्ठा। और अंत में है और बाद में है शांति। महाप्रभु का एक नाम शांति है और शांति का अर्थ होता है समस्त अविद्या की निवृत्ति। जब समस्त अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तब शांति आती है। और अविद्या की निवृत्ति होती है विद्या प्राप्त करके। और महाप्रभु की विद्या क्या वर्णन किया जाए। छोटे से बालक थे, निमाई पंडित, दिग्विजय केशव कश्मीरी, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को हरा हरा कर, दुनिया के एक से एक पंडित ब्राह्मणों को हरा हरा कर शास्त्रार्थ करता था और घूमते घूमते नवद्वीप में आया। बड़े बड़े पंडितों से हार गया, परंतु बड़े बड़े पंडितों के साथ जीत गया, परंतु निमाई पंडित के सामने 2 मिनट में हार गया। क्योंकि निमाई चैतन्य महाप्रभु आखिर तो भगवान है। तो शांति, संपूर्ण अविद्या से मुक्त थे और विद्या प्राप्त थी। और अंत में परायण। परायण का अर्थ होता है उत्कृष्ट अयन या स्थान। उत्कृष्ट स्थान अर्थात सबसे अच्छा स्थान, सबसे अच्छी जगह, जिसे पर आयन कहा जाता है। तो सबसे अच्छी जगह क्या है इस संसार में? सबसे अच्छी जगह उसे कहा जाता है जहां पर जाकर व्यक्ति वापस इस दुख में न आए। और सबसे अच्छी जगह गीता में भगवान वर्णन करते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। मेरा धाम एक ऐसा है जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, जिसमें न तो कोई सूर्य चंद्र तेज की आवश्यकता है, स्वयं प्रकाशित है। तो सबसे उत्कृष्ट भगवान का धाम है और भगवान का एक नाम ही परायण है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये 10 नाम महाभारत ग्रंथ में उत्तरायण पर्व में, अनुशासन पर्व में मिलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत। इसलिए यह नाम चैतन्य महाप्रभु के हैं। इसका अर्थ यह है चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही। ये केवल महाभारत की बात नहीं है, अन्य कई कई शास्त्रों में यह बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। कूर्म पुराण में कहा गया है कलिना दह्यमाना नाम उद्धराय तनुभूताम। इस दहते हुए, इस जलते हुए कलयुग का उद्धार करने के लिए जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यन्ति विजालये। घोर कलयुग में दहते हुए कलयुग का उद्धार करने के लिए कलयुग की प्रथम संध्या में, अर्थात इस कलयुग के प्रारंभ में द्विज आलये। द्विजालय का 2 अर्थ होता है, जहां पर बड़े बड़े पंडितों का, जहां पर विद्या का गढ़ है वहां पर, या द्विज के घर पर, द्विज आलय, द्विज के घर पर भगवान का जन्म होगा। वह पता लगा लीजिए कलयुग के प्रारंभ में और ब्राह्मण के घर पर किसका जन्म हुआ है? एकमात्र चैतन्य महाप्रभु, जिसने सबका उद्धार किया। कुर्म पुराण प्रमाण देता है कि महाप्रभु साक्षात भगवान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कहते अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषत माया पूरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुत। मैं और समीर लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति को थोड़ी भी बुद्धि है तो समझ सकता है। गरुड़ पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए बिल्कुल क्लियर है, माया पूरे नवद्वीपे, माया पूरे अर्थात मायापुर में, नवद्वीपे अर्थात नवद्वीप में भविष्यामि, भविष्य में मैं जन्म धारण करूंगा। किसके घर पर? कहते हैं सची सुत, सची के पुत्र के रूप में। अब सची के पुत्र के रूप में अर्थात चैतन्य महाप्रभु, इतना क्लियर है। फिर भी दुर्भाग्य है कि लोग इस बात को नहीं जानते। इतना ही नहीं, देवी पुराण, कुछ लोग देवी भागवत करते हैं, देवी पुराण में उमा महेश्वर संवाद में भगवान शिव अपनी भारिया पार्वती जी को कहते हैं कि हे प्रिये, नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण, कलयुग में नाम हरिनाम का उपदेश करने के लिए, हरिनाम देने के लिए क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नामा लोके भविष्यति। कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य नाम के भगवान का अवतार होगा और लोगों को कृष्ण के नाम का, हरि नाम का उपदेश करेंगे। नाम के साथ भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी को देवी पुराण में कि चैतन्य नाम के भगवान का अवतार होगा और वे हरि नाम का उपदेश करेंगे। इतना ही नहीं, नरसिंह पुराण में कहा गया है कि सत्य देत कुलाधि नाश समये सिंहोर्ध्व मर्त्याकृति, सतयुग में हिरणाकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह देव भगवान जन्म लिए। त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन समेति नामाकृति, दशकंदर दस दशानन रावण का वध करने के लिए त्रेतायुग में भगवान राम ने अवतार लिया। नरसिंह पुराण की यह बात है। और गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भरम हरण द्वापरे, और द्वापर युग में गायों का पालन करने के लिए, गोप गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। और कलयुग में, कलयुग की जब बात आई तो नरसिंह पुराण में लिखा है, गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामा प्रभु, गौर वर्ण के आएंगे भगवान। कैसे होंगे? गौर वर्ण के, गौर अंग के, और क्या करेंगे? प्रिय कीर्तन, कीर्तन करेंगे कलयुगे, कलयुग में कीर्तन करेंगे, गौरवर्ण के होंगे, और उसका नाम क्या होगा? चैतन्य नामा प्रभु, उनका नाम चैतन्य होगा। बिल्कुल क्लियर लिखा है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझकर चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार कर लेता है। इतना ही नहीं, पद्म पुराण जिस ग्रंथ, जिस शास्त्र से सब लोग अवगत है, पद्म पुराण के उत्तर खंड में कहा गया है कि कले प्रथम संध्यायाम गौरंगो अहम मही तले, साक्षात भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि कलयुग की प्रथम संध्या में गौरांगो, गौर रूप धारण लेकर महाप्रभु के रूप में अहम मही तले में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। कहां पर? भगीरथी तटे रम्य भविष्यामि सचिसुत, भगीरथी गंगा नदी के जाह्नवी के तट पर सची के, सची देवी के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। अहम महितले भविष्यामि, भविष्य में मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। इस प्रकार से एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महितले, कलयुग की प्रथम संध्या में गौरांग महाप्रभु इस महितल में जन्म लेंगे। और भगीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातन, ये दोनों श्लोक समान है, केवल दो शब्द में फर्क है, इसमें सनातन है और इसमें सच्ची सुत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में के प्रथम संध्याय में गौरांग महाप्रभु के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, मत्स्य पुराण में कहा गया है, मंडो गौर सुधीर धांगम स्त्री स्त्रोतस्तिर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो युगे, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मंडो गौर 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 विग्रह होगा और सुधि अर्धांग स्त्री तस्तीर संभव और वे दयालु होंगे, कीर्तन ग्राही वे कीर्तन करेंगे और इस संसार में कलो भविष्यामी भविष्य में कलयुग में कीर्तन हरिनाम भक्ति का उपदेश करेंगे। मत्स्य पुराण प्रमाण। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है गोलोकम च परितज्य, गोलोक का परितज्य करके गोलोक को छोड़कर साक्षात भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण लोकानाम त्राण कारतान, लोगों का त्राण करने के लिए लोगों का उद्धार करने के लिए कलो गौरांग रूपेण कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह वे लीला करेंगे और संसार के लोगों को आनंद प्रदान करेंगे। मार्कंडेय पुराण प्रमाण। और अंत में वामन पुराण में भी प्रमाण दिया गया है कली घोर तमच्छानात सर्वानाचारण वर्जितान सची गर्भेज संभूय तारस्यामि नारद। वामन पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जीव का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए लोगों का तारण करने के लिए हे नारद सची देवी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। इस प्रकार से एक नहीं अनेक अनेक शास्त्रों में यह प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं साक्षात भजेंद्र नंदन कृष्ण है और कृष्ण की यदि प्राप्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी है।